हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन कक्षा में। और आज बहुत विशेष अवसर, आज जैसे कि आप सब जानते होंगे, मंदिर में आए होंगे तो चारों तरफ जो है धूल ही धूल फैली हुई है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है गुंडीचा मंदिर महार्जन महामहोत्सव की। सो हम चर्चा करेंगे चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला से, 12वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक है गुंडीचा मंदिर की सफाई, और वहाँ से प्रयास करेंगे चर्चा करने का। हम श्लोक पढ़ेंगे, मतलब प्यार यहाँ पर तो काफ़ी सारे प्यार हैं, तो सारे प्यार नहीं पढ़ेंगे, 80 प्यार हैं तो इतना समय नहीं है, तो फिर असली जो मंदिर मार्जन का कार्य है वो रह जाएगा। हम प्यार संख्या 80 से हम पढ़ेंगे और फिर देखते हम कहाँ तक जा सकते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हम प्यार पढ़ेंगे, फिर अनुवाद पढ़ेंगे। इसमें तात्पर्य नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आगे जाके तात्पर्य है, तकरीबन 135वें प्यार में जाके तात्पर्य है। हम 80 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये वो वर्णन है। हर अध्याय के प्रारंभ में हालांकि अध्याय का एक कथासार होता है, पर उसको पूरे कथासार में जो है सिर्फ एक लाइन है, गुंडीचा मंदिर का मार्जन हुआ खत्म। और पर इसमें 50 से ज़्यादा श्लोक जो हैं इसी को समर्पित हैं, तो हमें प्यार से पढ़ते हैं। आप सुनिए, श्री श्री हस्ते दिलो सबारी एक एक मार्जनी, सब गण लइया प्रभु चलिलो आपनी, गुंडीचा मंदिर गेल करिते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लइया करिल सदन, भीतर मंदिर उपसकल माजिल, सिंहासन माजिल पुनस्थापन करिल, छोट बड़ मंदिर कइल मार्जन सदन, पाछे तैछे छोड़िल श्री जग महन, चारिदिके सत भक्त समर्जनी करे, आमा आपने सधेन प्रभु सिंघन सवारे, प्रेमोल्लासे सोधेन लयन कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम, धूलि दोष तनु देखिते शोभन, कहा कहा सुजल करे समर्जन, भोग मंदिर शोधन करिल सदन, प्रांगण सबल आकाश क्रमे करिल सदन, तीन धूलि झिंगु सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लइया फैलाए बाहिर करिया, এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে, তৃণ ধুলি বাহিরে ফেলায় পরমশে, প্রভু কায়ে কে কত করিয়েছে সমার্জন, তৃণ ধুলি দেখাইলে জানিবা পরিশ্রম, সবার ছেটানো বোঝা একত্র করিল, সভা হইতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল, এই মত অভ্যন্তর করিল মার্জন, পুনঃ সভা করিল দিল করিয়া বলন, সুখ ধুলি তিন কাকর সব কর দূর, ভালো মধ্যে সুদন কর প্রভুর অন্তপুর। यहां पर रुकते हैं, 80 से लेके जो है 93-96 तक आ गए, नहीं 93 तक आ गए, 93 तक। तो यहाँ से अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। अगले दिन भोर होते ही महाप्रभु ने अपने संगियों को अपने साथ ले लिया और अपने हाथ से उन सबके शरीरों पर चंदन लेप लगाया। फिर उन्होंने अपने हाथ से हर भक्त को एक एक झाड़ू दिया और उन सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए। तो जैसे यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं अभी गुंडीचा महाराज शुरू होने वाला है, आगे बढ़ते हैं। फिर इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ू से मंदिर को बुहारा। महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे साफ किया और उसे पुनः उसी स्थान पर रख दिया। इस तरह महाप्रभु तथा उनके संगियों ने मंदिर की बड़ी तथा छोटी सारी इमारतें बुहारी और साफ की। अंत में उन्होंने मंदिर तथा कीर्तन के सभा स्थल के बीच के भाग को साफ किया। सैकड़ों भक्त मंदिर के चारों ओर सफाई करने में लगे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लसित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। इसी तरह सारे भक्त भी कीर्तन करते जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे। महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, इससे वह और भी दिव्य रूप से सुंदर लग रहे थे। मंदिर की सफाई करते हुए कभी कभी महाप्रभु के आंसू आ जाते और कहीं कहीं तो उन्होंने उन्हीं आंसुओं से ही धुलाई की। इसके बाद जहां अर्च विग्रह का भोजन रखा जाता था भोग मंदिर, उस स्थान को की सफाई की गई। तत्पश्चात आंगन साफ किया गया और तब एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तिनको, धूल तथा बालू के कणों को एक स्थान पर एकत्रित किया और फिर अपने वस्त्र में बांधकर उन्हें बाहर ले जाकर फेंक दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सारे भक्त भी उल्लास पूर्वक तिनके तथा धूल को अपने अपने वस्त्रों में बांध कर मंदिर के बाहर ले जाकर फेंकने लगे। तब महाप्रभु ने भक्तों से कहा, मैं केवल यह देखकर कि कितने दिन के तथा धूल बाहर ले जाकर ढेर लगाया गया है बतला सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है और कितनी अच्छी तरीके से मंदिर की सफाई की है। यद्यपि सारे भक्त ने धूल का एक ढेर लगाया था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का ढेर उनसे भी बड़ा था। जब मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने के लिए अलग अलग खंड निर्धारित किए। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि वे सारी बारीक धूल तिनको तथा बालू के कणों को बाहर फेंककर अच्छी तरह से मंदिर के भीतरी भाग की सफाई करें। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णव ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अनुवाद पढ़ गए पर ये अगर अनुवाद जैसे है, जैसे कविराज गोस्वामी ने बताया है इसमें, तो अगर ध्यान से देखें तो इसका एक पूरी श्रृंखला है कैसे किसके बाद क्या हुआ। जैसे शुरू में जैसे बताया महाप्रभु ने, सारे भक्त जब इकट्ठे हुए शुरू में सुबह, तो सुबह से वो उन भक्तों का चंदन लगाया। अभी कॉमन सेंस ये कहती है चंदन की को मतलब लगाना हाई डिग्री की बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब उसके बाद आदमी भंगी का काम करने वाला है तो चंदन क्यों लगाया जा रहा है। सफाई तो भंगी का काम होता है ना, जब हम लोग अपने घर पे सफाइयाँ करते हैं, अगर करते हैं जब करते हैं, तो फिर इससे पहले चंदन थोड़ी लगाते हैं, चंदन तो बाद में लगाते हैं। पहले सफाई कर लो, सारा गंदा काम कर लो, नहा लो धो लो उसके बाद। पर फर्क ये है कि यहाँ पर भक्त लोग जो है भगवान का मंदिर साफ करने आए हैं, तो सेवकों का जो है कि सेवा की वजह से जो है करने के भाव से जो है महाप्रभु ने पहले चंदन लगाया उनको। क्योंकि जब भगवान के मंदिर की सफाई भी हो रही है तो भगवान के मंदिर की सफाई या सफाई करने के लिए सफाई करने वाले आदमी को खुद साफ होना पड़ेगा पहले। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है या स्वभाव आदत होती है। और खासतौर पर घरों में, मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो भी कई बार गौर किया है तो उसमें यही पाया है कि सफाई करने से पहले जो है आदमी जो है अपने आप को साफ नहीं करता. सो ये सफाई क्लीनलीनेस ये धर्म के चार स्तंभों में से एक स्तंभ है. हमें धर्म के चार, हमें चार नियम तो पता है पर नियम के पीछे चार सिद्धांत हैं. तो उसमें से सबसे कठोर जो नियम इस कलयुग में पालन करना होता है वो है अवैध यौन संबंध. और उसका जो सिद्धांत है उसके पीछे वो यही है, साफ सफाई क्लीनलीनेस शौच शुद्धता. तो आंतरिक एवं बाहरी, अक्सर भक्तों के समाज में आंतरिक शुद्धता पर जो है बहुत जोर दिया जाता है. और समहाउ किस कई बार ऐसा पाया गया है, पाया जाता है कि बाहरी शुद्धता पर, बाहरी साफ सफाई पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि बाहरी शुद्धता के पहले जो एडजेक्टिव लग जाता है वो है बाहरी. तो अक्सर हम जिस चीज़ को बाहरी समझते हैं उसको हम बेकार समझते हैं, एक्सटर्नल. बट एक्सटर्नल डजंट टेंटामाउंट्स टू इन्फीरियर. अक्सर एक्सटर्नल को इन्फीरियर समझ लिया जाता है, जो बाहरी है तो निकृष्ट है. आध्यात्मिक जगत में भगवान में ना बाहरी अंदरी कुछ नहीं है, भगवान भगवान है. बाहरी भगवान अंदरी भगवान ये मायावाद का सिद्धांत है. भगवान के अंदर कुछ है तो ये मायावाद है. भगवान का ना कोई बाहर होता है ना अंदर होता है. भगवान भगवान होता है, जैसे गूदा होता है आम का, तो वो अंदर से भी गूदा होता है बाहर से भी गूदा होता है. तो आध्यात्मिक सिद्धांत, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक धरातल और आध्यात्मिक जीवन, इसमें ना कोई चीज़ बाहरी होती है ना कोई अंदरूनी होती है, दोनों एक ही तरीके की होती है. उसको समान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी वो समान फल देता है, समान फल देता है. हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई बार कोट करते हैं, एक्सटर्नल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल. जो बाहरी जो हमारा जो प्रतिच्छवि है वो हमारे आंतरिक चित्त का जो है प्रतिबिंब होता है. तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है जो ये मंदिर की सफाई, आज गुंडीचा मंदिर मार्जन है. तो अक्सर जो ये बात बताई भी जाती है कि बाहर हम मंदिर का मार्जन करेंगे तो अंदर हमारे चित्त का मार्जन होगा, तो ये सिर्फ गुंडीचा मंदिर मार्जन के दिन नहीं है. ये 362 दिन जब भी हम बाहरी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से उससे हमारे अंदर के आंतरिक चित्त जो है वो साफ होता है, जिसके अंदर जो है काम क्रोध इत्यादि जो ये छह प्रकार के जो राक्षस हैं ये बैठे हुए हैं. तो इसके लिए बाहरी तौर पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है. अक्सर बाहरी 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 तो बाहरी हो जाता है वो, बाहरी नहीं है. और जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि सफाई के लिए जैसे महाप्रभु ने उनको चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद एक एक भक्त को, हर एक भक्त को एक एक झाड़ू दिया और सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु गुंडीचा गए. यानी कि महाप्रभु नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं साफ सफाई अभियान का. श्री श्री राधारतगण भगवान की, ऋषि गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रभुपाद की. तो ये भारी, ये इसका इसका अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं. नेतृत्व करने का मतलब क्या है? लीडिंग बाय एग्जाम्पल. तो ऐसा नहीं है महाप्रभु, ये चलन अभी भी है. अगर आज गुंडीचा के बाद कल पुरी में, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा की शुरुआत भी उसी से होती है, इसी झाड़ू से होती है. और झाड़ू उस इलाके के राजा के हाथ में होती है. राजा रथ पे नहीं बैठता, राजा झाड़ू लेके सबसे आगे रथ के आगे होता. क्लीनलीनेस, डीटी वर्शिप में, मंदिर वगैरह की सेवा में दो ही चीज़ें मायने रखती हैं, एक है सफाई और एक है वक्त की पाबंदी, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी. इन दोनों में से एक चीज़ की भी कमी है तो हमने सुना था इस ग्रह जन्मवास प्रभु से मायापुर में, यू हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड कृष्णा, यू हैव ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड. ऐसा नहीं है कि अभी आप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो आपकी सेवा खत्म होने से पहले ही आपने भगवान को अप्रसन्न कर दिया. अगर आपकी सेवा में ये दो चीज़ें नहीं है, सफाई नहीं है और भक्ति पाबंदी नहीं है, तो ये इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी इसकी अगुवाई जो है महाप्रभु कर रहे हैं, इसकी अगुवाई आज भी पुरी के राजा करते हैं। भारी भारी साफ सफाई। अगर हम अगर हम श्रील प्रभुपाद के लेखों को पढ़े, पुस्तकें, तो पुस्तकों में आपको प्रभुपाद के पुस्तकों में आंतरिक शुद्धता पर जो है ज़्यादा जोर मिलेगा। पर आप प्रभुपाद की जीवनी को पढ़ें और प्रभुपाद के शिष्यों से बात करें तो आपको पता चलेगा प्रभुपाद ने भारी सफाई कैसे कराई है। प्रैक्टिकली नानी याद आ जाती थी। तो ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। तो प्रभुपाद ने अपने किताबों में मेनली प्रिंसिपल्स पर जोर दिया और अपने जीवन से प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से जो है सफाई का महत्व क्या है वो जतलाया है, दिखलाया है। तो यहाँ पर जैसे आगे भी हम चलते हैं आगे, जैसे आगे बता रहे हैं कि इस तरह महाप्रभु ने है ना सबसे पहले गुंडीचा मंदिर सफाई करने गए सर्वप्रथम, तो इसलिए सर्वप्रथम बोले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा, पहले झाड़ू लगाए। हाँ ठीक है, पहले झाड़ू ही लगता है भाई, है ना, क्यों पहले पानी क्यों नहीं डलता, ऐसे अब तो ऐसे सर हिला रहे जैसे पता नहीं मैं वेदांत सूत्र कौन सा श्लोक बोल रहा हूँ आपको। कॉमन सा क्वेश्चन है, घर पे कोई सफाई नहीं करता, सबके घर में मेड़े आती हैं। पानी पहले डाल दिया तो कीचड़ फैल जाएगा। तो उसी तरीके से पहले झाड़ू का मतलब है पहले मोटी मोटी सफाई, ग्रॉस क्लीनलीनेस। जब ग्रॉस क्लीनलीनेस हो जाए, मोटी सफाई हो जाए, तब बारीक सफाई होती है। और मोटी सफाई करने से पहले अगर बारीक सफाई करने की कोशिश करेंगे कीचड़ फैल जाएगा। बाहरी सफाई करने से पहले सीधा अंदरूनी सफाई करने की कोशिश करेंगे कीचड़ ज्यादा फैल जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग है। जब तक आप पहले मोटी मोटी चीजों की सफाई नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी ब्लॉक्स को नहीं हटाएंगे, ये चार नियम जिसके लिए स्वच्छता, शुद्धता, सच्चाई, तपस्या, ये मोटी मोटी चीजों पे जब तक ध्यान नहीं डालेंगे, ये मोटी मोटी चीजों की सफाई जब तक नहीं होगी, ये चार पिलर और इसके अगेंस्ट में जो चीजें हैं, ये जुआ शराब की लत ना हटना, मांस आहार का हटना डटना, ये सारी चीजें, तब तक जो है ये मन की सफाई, ये सफाई वो सफाई, सीधा मन की सफाई पे भागते हैं ना, मन के अंदर ये पड़ा है वो पड़ा है और आदमी गंदा घूम रहे हैं, कोई उसका वो नहीं है, कोई किरदार नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। ये जब मोटी मोटी चीज़ों की सफाई जब तक नहीं होगी, जितना हरे कृष्ण महामंत्र चलाएंगे अभी ऐसे इन कैरेक्टर्स पे ध्यान ना देते हुए, चार नियमों की अवहेलना करते हुए, कीचड़ बढ़ेगा घटेगा नहीं। देख लीजिए व्यावहारिक जीवन से, कई बार ये सवाल उठता है इसीलिए, भाई चार नियम के पालन करने की क्या जरूरत है, आदमी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं युग धर्म है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप ये होगा। और होता है इसके ज्वलन दृष्टांत हम यहाँ पे राधा कुंड जाइए बहुत मिलेंगे, अब तो दिल्ली में भी मिलेंगे। जब तक इन क्रॉस, जब तक इन मोटे मोटे चीजों का, स्थूल चीजों का जो है पहले निदान मतलब की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हालांकि चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, पर किसी चीज़ पे जोर पहले डालना पड़ता है, किसी चीज़ पे जोर बाद में डलता है। तो इन चीज़ों पे जब तक जोर नहीं डलेगा, इसको नज़रअंदाज करके रखा जाएगा, सीधा पानी मारेंगे, जितना पानी मारेंगे उतना कीचड़ फैलेंगे। नवदा भक्ति के अंगों का पालन अगर यम और नियमों की अवहेलना करते हुए करी जाती है तो कीचड़ फैलता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि विधिम बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद है विकल्पत। तो ये है, इसलिए महाप्रभु ने बोला पहले झाड़ू। महाप्रभु से शॉर्टकट मार सकते थे, होस पाइप ले आओ छिड़क दो एक बार में सारा, उसे कीचड़ फैलेगा। इस तरह महाप्रभु ने फिर आप देखिए आप आगे महाप्रभु ने क्या किया, फिर भीतर की चीज़ें उठाई, बाहर रखी, छत में भी सफाई कराई, ऊपर जैसे आज ऑलरेडी आप लोगों ने देखा सबसे पहले छत की सफाई हुई है ऊपर से, तो सफाई हो गई, फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, जहाँ से उठाया फिर वहीं रख दिया। यानी कि सफाई करने के बाद जिस चीज़ को जहाँ से उठाया गया है वहीं रखा जाए, यानी कि आपने सेवा कर दी, दूसरों के लिए नई सेवा जनरेट ना करें। तो ये हर चीज़ के लिए लागू होती है। हट जाओ मुझे सेवा करने दो, मैं सेवा करने आया हूँ, गुरुजी मेरे भाव हैं। अज्ञातता की क्रियाओं को भाव का नाम नहीं दिया जाता। तो ये सबसे भाव जताने से, भाव दिखलाने जतलाने से पहले श्रृंखला की जरूरत होती। तो ये महाप्रभु का सिस्टम ऑर्डर, एक्सटेसी फॉलोज ऑर्डर, एक्सटेसी डजंट मीन्स डिसऑर्डरली अरेंजमेंट, दैट इज नॉट एक्सटेसी, दैट्स कैओस। सो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। फिर जब ये और आगे जाते जाएंगे तो फिर उन्होंने क्या किया, सारी छोटी सारी इमारतों को बुहार है, सारी इमारतों, फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके, एक के बाद एक मंदिर, फिर कीर्तन सभा स्थल के बीच का भाग एक एक करके गंदगी निकालते जा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सर्विस, स्टेप बाय स्टेप होती है, सिर्फ सफाई नहीं, कोई भी सेवा, इस सर्विस के बाद ये, इस सेवा के बाद ये, इसके बाद ये, क्रमबद्ध तरीके से सैकड़ों भक्त फिर वो सब लगे हैं, देखिए है ना। और महाप्रभु शिक्षा देने के लिए स्वयं भी कार्य कर रहे हैं। तो ये उस टाइम महाप्रभु लेक्चर नहीं दे रहे, या उस टाइम कीर्तन नहीं कर रहे, या उस टाइम जो है कहते हैं मुंह उल्टा करके नहीं पड़े हुए भाव में। उस टाइम जब फाइन टाइम फॉर सर्विस, टाइम फॉर सर्विस, तो महाप्रभु नेतृत्व करें, अगुवाई करें सेवा की। तो और अत्यंत उल्लसित होकर कृष्ण नाम को उच्चारण करते हुए, क्यों, क्योंकि कृष्ण नाम को उच्चारण नहीं होगा तो सेवा में 2 मिनट के अंदर भजलपा शुरू हो जाता है, जाहिर ही बात है। क्यों, क्योंकि सेवा करते हुए जोर पड़ता है, तो जैसे ही आदमी के अंदर जोर पड़ता है तो वो जो अंदर होता है बाहर निकल आता है। है ना, जैसे आपने सुना होगा ना बीरबल वाला ही, वो चुटकुला नहीं था, एक आया था आदमी अकबर के दरबार में, हर प्रकार के वो जबान बोलता था, परेशान हो गया, भाई इसकी जात क्या है, तो मैं अभी बता दूंगा आपको, क्या कैसे बताऊंगा, तुम मेरे साथ, आप मेरे साथ आ जाओ, है ना। फिर वो अंधेरा था जहाँ पे, वहाँ से आदमी निकल रहा था, खींच के जो अड़ंगी मारी उसको, सड़ा अंधा ऐसे बोला, और ये उड़िया है, गाली निकल आई मुझे। तो ये है ना, तो जैसे ही जोर पड़ता है तो अंदर का जो भाव है, अंदर की जो जात है वो बाहर आ जाती है। तो इसीलिए जैसे सेवा करके जोर पड़ेगा, इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र, ताकि अंदर की जात बाहर ना। तो ये तरीका तभी शुद्धिकरण हो पाएगा, नहीं तो कुछ देरों में जो है संबंध खराब होंगे, अपराध होंगे। फिर आगे देखिए यहाँ कैसे बता रहे हैं, इस तरह कीर्तन करते हुए भी जाते थे और अपना अपना कार्य कर रहे थे, अपना अपना काम, निजो काम करे, निजो काम, यानी कि जो सेवा उसे दी गई है वो सेवा वो कर रहे हैं। दूसरे की सेवा में दखलंदाजी, दूसरे की सेवा में टांग अड़ाना नहीं, अपनी सेवा को, सेवा हो गई जाओ, नहीं जी मैं वो वाली सेवा, इसकी सेवा, सब नहीं। यहां पर जैसे देख सकते हैं, फिर आगे, फिर महाप्रभु का सारा सुंदर शरीर धूल से धूसरित था, तो उस वक्त जब सेवा कर रहे हैं उस टाइम पे मेकअप का ध्यान नहीं रख सकते। ऐसे प्रभुपाद बता दें, एग्जांपल लेते हैं जब नाचने वाली है, अगर वो तो नाचने वाली अगर लड़कियां, नचनिया अगर है, तो उस टाइम पे जो घूंघट पहन के नहीं चल सकती, स्टेज पे आ गई है अब घूंघट उतार और नाच। तो ये शर्मा शर्मी जो है ये जब नीचे स्टेज के, तो जब आप सेवा करने आ गए हो उस वक्त ये सब नहीं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये हो गया जी, ये गंदा है, अभी अब गंदगी साफ करें तो गंदा ही है सब कुछ। तो महाप्रभु ने भी परवाह नहीं की इस चीज़ की। फिर करते हुए महाप्रभु जहाँ पे भी आंसू आ रहे हैं तो सब चीज़ हम देख सकते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी भोजन रखा भाव की सफाई की, आंगन साफ किया, फिर एक एक करके सारे रिहायशी मकान साफ किए गए मंदिर के अंदर, जो भी रेजिडेंशियल एरिया है वो भी मंदिर का हिस्सा, सब कुछ मंदिर। ये बाउंड्री लग गई जब, बाउंड्री के अंदर सारा मंदिर। और ये महाप्रभु दिखा रहे हैं अपने अपने उदाहरण से, हर जगह जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ भगवान प्रसाद पाते हैं, जहाँ भगवान के भक्त प्रसाद पाते हैं, जहाँ भगवान सोते हैं, जहाँ भगवान के भक्त सोते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, जो करते हैं, सब कुछ, सबकी सफाई। और महाप्रभु के अनुसरण करते हुए सारे भक्त तो जो है कपड़ों में बात बात करके फेंकने लगे। तो अब महाप्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे, कि आप लोगों ने, मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों ने कितना परिश्रम किया है धूल देख कर, यानी कि मेहनत चाहिए सेवा के अंदर। भक्ति काम चोरों के लिए नहीं, ना ही भक्ति काम चोरी से करी जाती। अक्सर भक्ति का नाम, भक्ति का जो है संबंध अज्ञानी लोग जो है निष्क्रियता के साथ जोड़ते हैं। हाथ में थैली पकड़ा दो, बस हो गई उसकी भक्ति। भक्ति का मतलब है वो ज़्यादा मेहनत करता है, और जो भक्ति करते हैं उसको इसका इल्म है, उसको उसका ज़ाती तजुर्बा है कि जो भक्ति का मतलब है ज़्यादा मेहनत होगी, ज़्यादा मेहनत। और महाप्रभु यही मेहनत देख रहे हैं उस टाइम पर, डायरेक्टली नाप रहे हैं मेहनत, मेहनत नाप के जो है महाप्रभु जो है भक्ति का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसने कितनी मेहनत करी, ये देखूंगा। कई बार भक्त लोग, कई बार ये सवाल अक्सर उठता है कि प्रभु जी माला गिन के क्यों करनी चाहिए, माला क्या करनी है गिन के, माला नापी जाती है इसलिए गिन के करी जाती है, आपकी मेहनत नापी जाएगी भगवान के द्वारा कितनी मेहनत करी, इसलिए ये एक वजह है। महाप्रभु इसलिए गिन के करते थे, गोस्वामी गिन के करते थे। सर्विस जो है जब तक मेजर नहीं करी जा सकती तब तक जो है भक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि अब जैसे आगे ढेर लगा रहे थे कि बता रहे ना, सारे भक्तों ने ये ढेर लगाया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने ढेर का ढेर उससे ही बड़ा था, है ना। तो जैसे हम सुनते हैं कि महाप्रभु का ढेर इससे ही बड़ा था तो क्या होगा, कोई ताली नहीं बजा रहा आज, हरि बोल। तो महाप्रभु का ढेर इसलिए बड़ा नहीं था, वो भगवान है। महाप्रभु का ढेर इसलिए बड़ा था, महाप्रभु उन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे, अब कोई ताली नहीं बजाएगा, अब कोई ताली नहीं बजाएगा। सबसे ज्यादा मेहनत, सबने जितनी मेहनत करी महाप्रभु ने आगे उससे ज्यादा मेहनत करी। तो सिद्धि प्राप्त होने पर तो सब लोग ताली बजाते हैं, साधना पर जो ताली बजाता है उसकी सिंसियरिटी निकल के आती है। जब वो साधना कर रहा था तब कौन सुन रहा था, तब कौन फॉलो कर रहा था, ये था रिजल्ट। पर रिजल्ट आया कैसे, महाप्रभु को दिखाया, महाप्रभु अगुवाई कर रहे हैं इसकी। और अगर जाहिर बात है सबने जितना ढेर लगाया है महाप्रभु का ढेर उससे ज्यादा है, इसका मतलब मेहनत भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, तभी है। तो सेवा का मतलब ये नहीं है कि एक सेवा ले ली और वो सुबह से शाम तक वही सेवा चल रही है। जैसे जैसे हमारे साथ कई बार अक्सर ऐसा भी होता है, सबके साथ, मेरे साथ कई बार होता है ऐसा, जब सेवाएं सुबह से लेकर रात तक चल रही है, सेवा उतनी ही, 16 घंटे हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे, चल रही है सेवा, जारी है नहीं, सेवा है तो उसको स्पीड के साथ संपन्न करें, हड़बड़ाहट के साथ नहीं पर फुर्ती के साथ। तो ये तभी वो रिजल्ट आ रहा है, सुन महाप्रभु फुर्ती ले वहां पर। फिर सफाई पूरी हो गई, जब भीतरी मंदिर की भीतरी सफाई पूरी हो गई तो महाप्रभु ने फिर से भक्तों द्वारा साफ किए जाने में अलग अलग खंड निर्धारित किए। एक बार सफाई हुई आप दोबारा, सो मतलब एक बार हो गया सेवा तो नहीं, अभी और गहराई में जाना, जब ग्रॉस हो गई फिर सटल पे, सीधा सटल पे हमला मत करिए, पहले ग्रॉस की परवाह करें, नहीं तो ग्रॉस दबा डालेगा बोझ के तले। जो स्थूल चीज़ें हैं वो स्थूल चीज़ें हमें दबा डालेंगी, और ऐसा देखा जाता है श्री भक्ति में। प्रारंभिक स्तर पे जब हम लोग कृष्ण भावन में आते हैं, पहले 2-3 साल बहुत जोश होता है और सीधा निशान अंदर तक जाता है। मन की सफाई करनी है, प्रभु जी ऐसा करना है, प्रभु जी वैसा करना है, फलान ढिमकान ऐसा ऐसा कर रहे हैं, अभी हम रात जाके माला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भर फुस 3-4 साल। क्यों? क्योंकि जो ग्रास चीजें थी वो ज्यों की त्यों पड़ी। हल्की चीज भी जैसे ये है, अगर थोड़ी देर पकड़ी रहनी पड़े तो अपने आप भारी लगने लगती है। तो ये 16 वाला 4 नियम शुरू में ऐसा लगता है चुटकियों का खेल है, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, जब 40 साल 50 साल करनी पड़ेगी जब इसका बोझ पता चलता है। तो इसीलिए उस वक्त इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ग्रॉस चीजों पे पहले ध्यान दें, स्थूल चीजों पर। तत्पश्चात महाप्रभु ने सबको आदेश दिया कि अब सब बारीक धूल निकालो, तब दिया जब ग्रास हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा सफाई कर ली, तब महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, हाँ अब जो है मेरे मन माफिक, मेरे मन मुताबिक जो है ये चीज सफाई हुई है। तो हाँ, तो यहाँ पर जैसे अब वही सेम चीज, अब कोई ये भी कह सकता है महाप्रभु के वक्त क्या जरूरत थी, किसी को भी आवाज मारते ऐसी बुला लेते बाहर से, उस वक्त भंगी चमार नहीं होते थे क्या, ज्यादा होते थे। और एक एक भंगी को अगर हम दे दें मंदिर सफाई करने के लिए तो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छी सफाई नहीं करेगा, मकसद क्या है सफाई कराने से, है ना। तो कोई आदमी बहुत आसानी से बात कर सकते, भाई जिसको जो काम आता है, जो जिसका काम उसको काम दो, तो क्यों नहीं हम भंगी से सफाई करवाएं। है ना, होना तो यही चाहिए। तो क्यों सफाई करवा रहे, क्योंकि ये सफाई जो है ये मेरी सेवा है। पर इसी तरीके से जब आमतौर पर देखते हैं घरों में, भाम्स खासतौर के भक्तों के घरों में मेड का कल्चर होता है, आज घर पे मेड नहीं आई, बस खत्म, सब उठ गया, आरती का टाइम हिल गया, जप हिल गया, ये हिल गया, सब हिल गया, मेरा मेड नहीं आई। मेड नहीं आई तो मैं अपाहिज हो गई। तो ये मेड है ना, घर पे मेड नहीं आई, अरे मेड क्या सफाई करेगी, अरे मेड ना नहाती है धोती है ना कपड़े बदलती है, वो भैया 10 घरों की सफाइयां करके आ रही है, बदबू उसके शरीर से निकल रही है, आपके घर की क्या सफाई करेगी। हाँ सोचिए क्या बना रही है वो मेड आपको, लेजी सुस्त। तो जो आदमी अपने घर की सफाई नहीं करेगा वो मंदिर की सफाई भी वैसे कर, फिर मेड से मंदिर की सफाई भी कराएंगे आप, क्यों नहीं कराएंगे। फिर वो मेड आपका घर का खाना भी बनाएगी यानी कि प्रसाद, तो मेड आपके घर की सफाई भी करेगी, तो फिर रह क्या गया। भक्ति में यही तो सेवाएं होती हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। तो ये मंदिर में जब सफाई होती है तो पूरे मंदिर की सफाई हो रही है। तो अगर आपके घर में डीटीज हैं तो फिर घर की सफाई कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है, सोची। तो ये और फिर क्या होते धीरे धीरे, कैसे कल्चर खराब होती है, एक्सटर्नल्स है, हम एक्सटर्नल्स पे बात करें, ऐसे कल्चर खराब होता है। अब मेड आ गए तो आप स्वस्थ हो गए, फिर आपके बच्चे काम नहीं करेंगे क्योंकि मेड आएगी, मेड साफ करेगी, जो अपनी माँ को देख रही है कि वही खाली बैठी हुई है, मेड आएगी जब साफ करेगी तो बेटी बेटी क्यों काम करेगी, क्यों घर करेगी काम। और सफाई वही करवा सकता है, बुरा नहीं मानिएगा, जो खुद जिसको खुद सफाई करनी आती है। अगर आपको काम आता है तभी आप दूसरे से काम करवा सकते हो, इसीलिए होता है हमारी मेड ऐसी है काम चोर है, अरे क्योंकि आप काम चोर हो। फिर मेड आती है साफ करके, सफाई क्या करके जाती, घर की सफाई कर जाती, ओहो मेड आ गई 15,000 ले उठा दी, ले ही जाएगी, अपने घर घर खुला छोड़ा, और लापरवाही है। जब आपको सफाई करानी करनी नहीं आती तब सफाई करवा नहीं पाओगे, अगर सफाई करवा नहीं पाओगे तो आप निगरानी नहीं रख पाओगे। यहां पर जैसे महाप्रभु का उदाहरण, से महाप्रभु सबसे पहले खुद सफाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो सफाई कर सकता है वो सफाई करवा सकता है। जो सेवा कर सकता है अपने हाथों से वो दूसरे से सेवा करवा सकता है। वैसे उस दिन इसलिए कृष्ण जी बोल रहे थे यहाँ से कि बातें तो बहुत लोग कर सकते हैं, प्रवचन देने वाले तो बहुत मिल जाएगा हिंदुस्तान में, तो नसीहत देने वाले बातें करने वाले की कमी थोड़ी है, हर घर में मिलेगा। काम करने वाला कौन मिलेगा? तो ये ज्यादा अहम चीज है। ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये इस पे बेस्ड है। अरे अगर आप दो तीन रूम के फ्लैट की सफाई नहीं कर सकते तो भगवान महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में क्या योगदान दोगे? हाँ बताओ। और ये सिर्फ क्या घर में लड़कियों का काम है, औरतों का काम है? मर्द क्या करेंगे? वो सिर्फ गंध फैलाने के लिए होते हैं। जो घर में जो लड़के हैं मर्द हैं सिर्फ गंध फैलाएंगे। और ये कल्चर में पता लगता है, यही जब हमारे यहाँ पर मंदिर में बच्चे आते हैं आईवाईएफ के अंदर और जब ये फुल टाइम ट्रेनिंग के लिए आते हैं तब निकल के आता है घरों, वो किस किन घरों से आए हैं? पिताजी किसी के रिटायर्ड कंप्यूटर जनरल, कोई कर्नल जनरल, पता नहीं क्या क्या, और लड़के सारे गंदगी का अवतार। क्यों? क्योंकि घर में ये कल्चर है। बाहर के लीपा पोती तो बहुत अच्छी है, घर के अंदर क्या है? तो वो आदमी जो अपना घर साफ नहीं रख सकता वो भगवान के मंदिर में क्या सेवा करेगा, कितनी देर करेगा? अगर अपने वर्ण और आश्रम की ड्यूटीज ही आप नहीं संभाल पा रहे उसी में जो है आपका पसीना छूट रहा है तब कब तक भक्ति करेंगे? ये बात है असली। आज तो आप कर रहे हैं ये तो ठीक है, इसकी फिक्र नहीं है, अब फिक्र ये है कि कब तक करेंगे। ये शॉर्टकट नहीं है भक्ति के अंदर कि नहीं जी वो घर में कौन देख रहा है, यहां पे आ जाओ, यहां माला कर लो बैठ के, सब लोग जानेंगे भक्ति। अरे सब लोग ये भी देखेंगे फिर गायब हो गया हो। उसके लिए ये बुनियादें स्ट्रांग करनी पड़ेगी और बुनियादें अपने वर्ण और आश्रम की ड्यूटीज को फॉलो करके होती हैं। और धर्म के जो बुनियादें हैं वो ये चार ही स्तंभ हैं, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस और ये मर्सी, कंपैशन, वो यही है। हरे कृष्ण मूवमेंट में आने से चारी चीजें जो है छोटी नहीं हो जाती, रादर इनकी महत्वता बढ़ जाती। और जो खुद सफाई नहीं कर सकता उसको गंदगी दिखती भी नहीं है, फिर जो जो काम करता है उसको काम दिखता है, ये जाती तजुर्बा है। अगर आपको सफाई की आदत नहीं है, अगर आपको बाहर की गंदगी नहीं दिखाई दे रही, आपको क्या अंदर की गंदगी दिखाई देगी? अंदर की गंदगी, अंदर की गंदगी, अंदर क्या है? सारा ज्ञान भरा पड़ा है, आपको बाहर की गंदगी दिखाई नहीं देती। घर गंदा पड़ा है दिखाई नहीं देता, कपड़े गंदे दिखाई नहीं देते। भक्त लोग जीन्स पहन के आते हैं, अरे जीन्स का मतलब ही गंदगी है। जीन्स को रोज धुलती है क्या? महीने में एक बार धुलती है, इसका मतलब क्या है? पूरे 29 दिन की गंदगी आप जो है ओढ़े घूम रहे हो, ये गंदगी आपको दिखाई नहीं देती। आए बड़े चले अंदर की गंदगी सफाई करने, समझ रहे बात को? तो कैसे होगा ये सब? इसकी शुरुआत बाहरी तौर से शुरू होती है। भगवान ने मन मना भव भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु आईएस बताया है, पर भक्ति की परिभाषा है ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम उच्चते। बाहरी इंद्रियों को स्थूल इंद्रियों के भक्ति भगवान की सेवा में लगाने को भक्ति कहते हैं, तब जाके किसी का मन मन लगता है, तब लगता है जाके मन। तो इंद्रियां कहां लगेंगी? इन्हीं चीजों में तो लगेंगी, इन क्रियाओं में। तो अगर हमारे अंदर आलस भरा होगा तो फिर कहां लगेंगी? फिर मन हमें वो यही बोलेगा, इसे भक्ति नहीं कहते। मन की उधेड़बुन कल्पनाओं को और हवाई किले बनाने को भक्ति कहते। फिर बैठे बैठे हवाई किले बनाते रहते हैं, हम शेख चिल्ली के सपने लेते रहते हैं और हमें बहुत भक्ति कर रहे हैं। गड़बड़ी वहां है, यहां से शुरू होती है गड़बड़ी। मेहनत जब तक नहीं करना चाहेंगे तब तक ये चीज चलती रहेंगी, कल्पनाओं में रहेंगे, ख्वाबों की दुनिया में। तो ये इंद्रियों को लगाएं भगवान की सेवा में, जहां पर रह रहे हैं उन जगह को कम से कम साफ सुथरा तो रखें। अरे भाई कई जानवर भी होते हैं वो बैठते हैं जिस जगह, भाई पूंछ से साफ करके बैठते,
बुरा नहीं मानी, घरों में जाते हम देखते हैं, कई घरों में लड़कों के रूम में जाओ, ओ हो, मतलब अंडरवेयर से लेके सारी चीजें फैली पड़ी होती है रूम के अंदर, मम्मी आएगी साफ करेगी, और लड़का यहीं बैठा हुआ है रूम में काम करे, मम्मी पानी देना, पानी यहीं पड़ा है, यहीं पड़ा है पानी, आलसी। और वही सेम चीज लड़कियों पे भी लागू होती है आजकल, सब बच्चे आते हैं, मम्मियाँ आती हैं बताती हैं हमारी लड़की काम नहीं करती, कोई काम नहीं करती, अरे भैया आप काम नहीं करते इसलिए लड़की काम नहीं करती, लड़कियां तो हमारी कुछ नहीं करती, काम नहीं करती, प्रभु जी हम लड़कियां देखो ना क्या कह रही, क्या कह रही प्रभु जी, हाँ लड़के के आज साथ हम ना प्रभु जी शादी नहीं करेंगे, अरे तेरे ऐसे काम की ना काज की, नौ मन अनाज की है, 10 से 15 हजार की तो अपने घर पे पड़ती है, है? तेरे को काम काज कुछ आता नहीं है, अरे तेरे ऐसे सफेद आदमी को पाले में शादी नहीं करी, तेरे से शादी कर कौन रहा, तो क्या ये ना क्या कल्चर है, तो सबके घर में ही, और सबके घरों में शादियों के बाद लड़ाइयां होती है, यही होता है कि घर में बीवी काम नहीं करती, कहां से करेगी काम, 25 साल तो वहां पे राजा नहीं बना के बिठा के रखा होता उसको, तू भी रानी मैं भी रानी, कौन करे बड़े घड़े का पानी, तो माँ भी काम नहीं करती, बेटी भी काम नहीं करती, अब आप जब अपने सगे बाप के घर में जिसने काम नहीं किया, पराए के घर में क्या काम करेगी, अब भक्ति कराओ उनसे, माला करूंगी, तो माला क्या करोगे तुम, कितने दिन करोगे, आज तो कर रहे हो कब तक करोगे, क्लीनलीनेस जो है ये वोमनली काम नहीं है, इसलिए यहां पर सब सबको बुलाया जाता है, मेल मेंबर आके क्लीन करते हैं, तो क्या सिर्फ मंदिर क्लीन करने के लिए होता है, और घर का, घर में बैठे हो ओए सफाई कर दियो, अच्छा ये कल्चर है, ये कल्चर है, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक फिलॉसफी नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक कल्चर है, संस्कृति, असंस्कृत, असंस्कृत असभ्य का मतलब होता है जो गंदा रहता है, भागवतम 11th canto क्वालिटीज बता रहे भगवान उद्धव गीत, असंस्कृत, असंस्कृत का मतलब ये नहीं जिसको संस्कृत नहीं आती, असंस्कृत का मतलब है जो एक्सटर्नली अनक्लीन रहता है, वर्ड मीनिंग एक्सटर्नली अनक्लीन एंड इंटरनली कंटेमिनेटेड, जाहिर ही बात है वो होगा ही अंदर से कंटेमिनेटेड, क्योंकि पता लग रहा है उसको गंदगी दिखाई नहीं देती, इसका मतलब क्या है, उसको गंदगी में रहने की आदत है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि आज आज कोई कोई कल्चर नहीं है क्लीनिनेस का, बचपन से सिखाया जाता था, बचपन से कि भाई सीखो चलो सफाई करो, बच्चों को पहले बिगाड़ देंगे उसको उसी सारा काम खुद करेंगे पहले बच्चे का, राजा बेटा मेरा राजा बेटा फिर आपका बाप बन जाएगा जब आपको दिक्कत होगी, राजा बेटा आपका नलायक है एक नंबर का, एक बार हमारे आदमी किसने प्रश्न पूछा था, मुझे याद नहीं किसने पूछा था, यहीं पे पूछा था, तो दिन मेरी सेवा थी भागवतम की, कहते प्रभु जी हमारा बेटा जो है ना थोड़ा वो है ना समझ है नादान है, नादान नहीं है नलायक है काम नहीं करता, तो यू नो ये अगर आपके बच्चे काम नहीं कर रहे सफाई साफ सफाई नहीं रखते, इसका मतलब आप जान के चलिए कि बाद में जो है उनकी काम वासना ये सब चीजें बढ़ेंगी, ये गंदगी से काम वासना बढ़ती है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तभी इलिसिट सेक्स को क्लीनिनेस का वो बताया गया, इससे क्लीनिनेस खत्म होती है, तो उल्टा भी होता है, जितनी साफ सफाई रखेंगे बाहरी रूप से कम पहले शुरुआती तौर पर पहले बाहर तो साफ कर ले, कई साल लग जाएंगे सफाई की आदत डालने में, ये जो वैष्णव शिष्टाचार है ये पहले सबसे पहले बाहरी चीजों पे ध्यान देने के लिए होते हैं, कैसी कैसी आदत पता ही नहीं होती, कैसी कैसी आदतें होती हैं, इधर उधर थूकने की आदत होती है, नाक में कहीं भी हाथ डाल लिया, शरीर के किसी भी छिद्र में हाथ डाल लिया, लगता ही नहीं इससे भक्ति को कोई लेना देना, अरे आपको गंदगी की आदत है, जैसा जो आदमी गंदगी पसंद है उसका रुझान, उसकी जो मानसिकता है, उसके जो संस्कार पड़ रहे हैं, वो उसको उसी तरफ लेके जाएगी। ये लॉ है इसका। आप उसी चीज की सफाई करेंगे जिसको आप अपना मानते हैं, उसी की मेंटेनेंस होती है ना। हाँ तो बस, गाड़ी की सफाई कब करता है आदमी? जब गाड़ी अपना मानता है, नई गाड़ी आती है तब सफाई करता है, पुरानी तो पड़ी रहती है। तो नई गाड़ी तो हर कोई सफाई कर लेता है, पुरानी गाड़ी को साफ रखना बिल्कुल उसी टाइप से। नई नई भक्ति में तो सब जोश दिखा लेते, पांच पांच सात सात साल चलने के बाद फिर जोश दिखाना, हाँ उसके लिए बहुत होश चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। अब तो सफाइयां भी हो गई हैं। तो क्या हो भाई, पहले मुझे याद है बचपन में भाई घर में दो ही चीजें होती थी साफ करने के लिए, एक झाड़ू और एक मोछा और एक बाल्टी, इससे होती थी सफाई। अब वैक्यूम क्लीनर आ गया जी, हैंड स्क्वीजी आ गई जी, और क्या हुआ उससे, और आलसी हो। पहले डंडा लेते थे, डंडा मार मार के जो उस पर सोफे मारते सारा गंदा निकल जाता था। अरे आदमी मेहनत करता था तभी ओन करता था उसको। उल्टा भी है, जिस चीज पे मेहनत डालोगे वो चीज अपनी लगने लगेगी। अपनी चीज पे आदमी मेहनत करता है ये भी जितना ठीक है, जिस चीज पे मेहनत करता है वो उसको अपनी लगने लगती है वो भी उतना ही ठीक है। इसीलिए ऐसा होता है, आप कोई चीज अपनी नहीं लगती, हाँ ठीक है भेज दो इसको, फेंक दो इसको, नया ले आओ, ये कर, बस यही हो रहा होता। फिर कुछ दिनों बाद यही चीज रिलेशनशिप में भी लागू होती है फिर, क्योंकि शुरू से आदत ही पड़ गई है, पुराना हटाओ नया लाओ, पुराना हटाओ नया लाओ, ये कबाड़ में बेचो नया लेके आओ, नया मोबाइल नवाया ये नया हो। फिर कुछ दिनों बाद अरे ये हस्बैंड पुराना होगा फेंको इसको नया लेके आओ, ये वाइफ पुरानी होगी इसको फेंको नया लेके आओ, बाप पुराना होगा फेंको नया ले आओ, यही है। बाप पुराना है फेंको, नया बाप बना लो, बाप को बना लो किसी को बाप, मजबूरी पड़ती है तो आदमी गधे को ही बाप बना लेता है। तो ये यहां से आता है कल्चर, जिस चीज पे मेहनत नहीं डालनी तो फिर बस उसको फेंको नया लेके आओ। हमारे मंदिर में नहीं होता ऐसे थोड़ी, हमारे मंदिर दयाएंगे इस ऑल्टर में क्या चीज फेंकी उसके अंदर से, क्यों मेहनत डलती है तब अपना बनाता। तो शुरू में तो पहले यही कल्चर था, अब तो सारा चेंज हो गया पूरे। माता जी इसके लिए नेचुरल एक्सरसाइज है क्लीनिंग, वो नहीं करेंगी फिर जाएंगी इधर स्लिम फास्ट कैप्सूल चाहिए और ट्रेडमिल चाहिए और वो वाली साइकिल चाहिए जो उसी जगह पर रहती है जितना पेडल मार लो, देख काम करने नहीं पहले घर के जो मेहनत थे काम करने, फिर बीमारियां लग जानी उन्होंने। इस्कॉन किस लिए मशहूर है मालूम है आप लोगों को तो मालूम ही होगा, जो लोग बाहर से आते हैं सनातन धर्म मंदिरों में क्यों नहीं जाते, सफाई की वजह से। फिर कौन सी सफाई देखते हैं, अंदरूनी की बाहरी। फिर तो आप भी उस सफाई को देखे आज इस्कॉन आए हो तो अब क्या हो गया, अब वो सफाई अब वो जरूरी नहीं रही, अब वो बाहरी सफाई जरूरी नहीं रहा। अरे इस्कॉन साफ है तो आप अपने घर अपने इस्कॉन आते हो तो भैया आपको अपना घर भी तभी अच्छा लगेगा जब उसमें साफ सफाई होगी। तो ये तो खास तौर पर ऐसी जब सफाई किसी भी इस प्रकार का जब वैल्यू सेट करना होता है, यानी कि कोई कोई रवैया बदलने की बात आ रही है, जब कोई अंदर कोई वैल्यू को क्या कहेंगे, वैल्यू क्या कहेंगे, गुण गुण मूल्य 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 है ना, कोई मूल्य उसको जब बदलने की बात आती है या उसको स्थापित करने की बात आती है तो उस वक्त जो है लीडर ऑफ द कम्युनिटी उसको अगुवाई करनी चाहिए, तभी वो हो सकता है। जैसे कि हाँ महाप्रभु के हम उदाहरण से देख सकते हैं या पूरी का महाराज अपने उदाहरण से दिखाते हैं, अभी भी कल भी आप टीवी पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है। तो हम सब यहाँ पर जिन जिन लोग हम नेतृत्व करते हैं मार्गदर्शन करते हैं तो जिस चीज का बदलाव लाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले खुद को कूदना पड़ेगा, तब हम उम्मीद कर सकते हैं। घरों में अगर हमको बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी, तब आप उम्मीद। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी कई बार बदलाव नहीं आता, तो फिर उसको करे बिना क्या बदलाव आएगा, आप समझ रहे हैं? सो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब तभी हम ये सोच सकते हैं कि कभी हम ये बाहरी चीज़ों को जो है उसको उसको उस पर काबू करने के बाद फिर हम आंतरिक चीज़ों पर, जो गहरी चीज़ें हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, समय पूरा हो चुका, अधिक हो चुका, समय भी विराम देंगे। श्री चैतन्य चेतामृत की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की, ताई गो शतनात्मानंदे।